ओम शांति। आज 16 अगस्त 2023 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, दुरादेशी और विशाल बुद्धि बनो। दुरादेशी, दुरादेशी का मतलब क्या होगा? दूर की सोचने वाला। और विशाल बुद्धि मतलब एकदम बहुत खुले विचारों वाला, संकीर्ण बुद्धि नहीं, छोटी बुद्धि नहीं, हद में सोचने वाला नहीं, बेहद में सोचने वाला। शिव बाबा के कार्य में कभी डिस्टर्ब नहीं करना, शिव बाबा के कार्य में कभी डिस्टर्ब कोई कर सकता है? फिर बाबा क्यों कह रहे हैं? और समझेंगे भी वही आत्माएं जो कल्प पहले संचित, जिन्होंने जो करना है वो करेंगे, परंतु बाबा कहते डिस्टर्ब करने के कारण, क्योंकि ये बता इसलिए रहे हैं ताकि कोई आत्मा ये ना कहे कि मुझे पता नहीं, मुझे पता नहीं भाई, जो तूने किया वो तेरे को मिल रहा है। कभी डिस्टर्ब नहीं करना, डिस्टर्ब करने वाले को ऊंच पद नहीं मिलता, क्योंकि जो अच्छा पद है वो उसको नहीं मिल सके। पद पाना है तो बाबा की श्रीमत पर एक्यूरेट चलना है। प्रश्न, इस दुनिया में मनुष्यों को कौन से ख्यालात रहते हैं जो सतयुगी देवी देवताओं को कभी नहीं आएंगे? इस समय के मनुष्यों को रहते हैं, परंतु सतयुग में भी मनुष्य होते हैं, परंतु वो देवी गुणों वाले होते हैं, उनको ये ख्याल कभी नहीं आएगा। ऐसा कौन सा ख्याल है? यहां मनुष्य समझते हैं कि हम कमाएंगे तो हमारे हमारे पुत्र, हमारे पोत्रे, हमारे पाल पोत्रे 21 पीढ़ियां मौज करें, हमने इतना कमा दिया। क्या? लेकिन ये ख्यालात देवताओं में नहीं होंगे। क्यों? वो क्या है, ऐसा कौन सा गुण है, कौन सी ऐसी बात है उनके अंदर जिसके कारण वो ऐसा नहीं सोचे? संतोष है, मेरी 21 पीढ़ियां बेचारी भूखी मर जाएंगी, उनके लिए इकट्ठा करके तो रख जाऊं। अब यहां इकट्ठा क्यों कर रहे हैं? मेरे पल पोते, सड़ पोते, बड़ पोते जो भी आए 21 पीढ़ियां तक, उनको कोई कमी, क्योंकि उनके पुत्र और पोत्रे सब यहां से ही वर्षा लेकर जाते, क्योंकि हर एक को कमाई तो अपनी मिलनी है ना, किसी दूसरे की मिलनी है, अपनी मिलनी है। अब जो कमाई करके जाएगा, जैसा देकर जाएगा वैसा ही तो आकर लेगा, जिनके प्रति छोड़ के जाएगा उनसे ही तो आके लेगा। अब आप अपने बच्चों को या अपने बड़ों को या अपने संबंध संपर्क वालों को दुख देते हो तो आपको वो क्या देंगे? दुखी देंगे, सुख सुनाई देंगे। फिर तो जो जो भी हम यहाँ करके जा रहे हैं वही तो हमको सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चारों युगों में मिलना है। और अब जो आत्माएं सतयुग में आएंगी वो आएंगी जिन्होंने सबको सुख दिया होगा। जितनों को सुख दिया होगा उन्हीं के पास जाके जन्म लेंगे, दूसरे के पास थोड़ा जन्म ले लेंगे। जिनके साथ हिसाब किताब ही नहीं बनाया, जिनके साथ हिसाब किताब बनाया होगा उन्हीं के पास तो वो जाकर क्या जन्म लेंगे। और वो अपनी जो जितना दे के गए होंगे उतने ही तो लेंगे आकर के। वो समझते हैं हमारी अविनाशी राजाई, वो समझते हैं क्या हम आए हैं, हमारी ये राजाई जो है अविनाशी। यहां ही हर एक अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं, हर एक अपना पुरुषार्थ उसी प्रकार से आकर के लेगा। और द्वापर कलयुग में जिनके लिए छोड़ के जाएंगे वही अगले कल्प में छोड़ेंगे, वो हमें दे देंगे। पर जिनके लिए हम छोड़ के जाएंगे, क्यों छोड़ के जा रहे हैं, उनका कर्जा है ना हमारे ऊपर, तो उसके लिए कमा 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 करके उसको, वो जरूरी नहीं कि अपना बच्चा हो, वो अजनबी भी हो सकता है, अजनबी भी सारी प्रॉपर्टी का मालिक बन सकता है। कुछ बचा ही नहीं लेने वाला, किसी के पास ताकत नहीं जो आके उससे ले सके। और फिर बाबा ने हमें एक और बात बताई है अभी दो तीन दिन पहले कि आपके ये पोत्रे पल पोत्रे क्या करेंगे, खाएंगे आपकी जायदाद को, क्यों नहीं खाएंगे आप छोड़ के जाओगे, आपके पोत्रे पल पोत्रे नहीं खाएंगे। वो भी साथ चलेंगे, चाहे वो एक दिन का होगा, एक घंटे का होगा, 5 साल का होगा, 100 साल का होगा, सभी एक साथ जाएंगे। बाबा ने कहा वो तुम्हारी धूल भी नहीं खाएंगे। पैसे तो धूल, यदि तुम उनके लिए धूल भी छोड़ के जाओगे ना, वो धूल भी नहीं खा सकते। जैसे आप जाओगे वैसे वो जाएंगे, एक साथ जाएंगे सारे के सारे। तो फिर आपकी प्रॉपर्टी को कौन खाएगा। इसलिए बाबा कहते अब पुरुषार्थ करो, सतयुगी अकर्म के खाते में अपने तन को मन को और धन को लगा दो ताकि वो आपको सतयुग में मिल जाए। क्योंकि नहीं तो पड़ा ही रहना है और उसको आग ने जला देना है, कोई संभालने वाला पोतरा दोतरा तो कोई बचना नहीं ना। माता ओ माता तू है जग की भाग्य विधाता। ओम शांति। बच्चों ने माताओं की महिमा सुनी, बच्चे जान चुके हैं किस किस माता की महिमा होती है। माताओं की इतनी महिमा करते हैं तो जरूर होकर गई है, वो ऐसी माताएं होकर गई होंगी तभी तो उनकी इतनी महिमा करते हैं। अभी तो वो है नहीं, अभी तो वो माताएं ऐसी है नहीं कि जिनकी महिमा की जाए। जो जगत अम्बा होकर गई है उनकी भक्ति मार्ग में महिमा होती है, अब वो क्या करके गई, जगत अम्बा क्या करके गई, ये कोई भी नहीं। पूछ के देख लो किसी से, जागरण करने वालों से पूछ कर देख लो इस जगत अम्बा ने क्या किया, वो ध्यानु भगत वाली कहानी सुना देंगे, ये किया था, उससे अलग भी कुछ किया, बस एक ही काम करके गई थी कि ध्यानु भगत को मरने से बचा के गई। और देखा जाए तो उस कहानी के अनुसार भी अभी भगत हुआ वो कुछ टाइम पहले, और उसने उसको आकर बचाया। उससे पहले कहां पैदा हुई, क्या किया, कहां पढ़ाई की, कैसा काम किया जिसके कारण इतना ऊंच पद पाया, फिर कैसे उसने अपने जीवन को चलाया होगा। क्योंकि उस कथा के बिना ये जागरण पूरा नहीं होगा, क्योंकि उसमें वो सब लोगों को बुद्धू बनाते हैं कि ये करोगे देखो इन्होंने किया, इनको फायदा हो गया, इनको फायदा हो गया, इनको फायदा हो गया। अब वो क्या करके गई ये तुम भी नहीं जानते थे, कहीं तुम ज्यादातर कड़ी में आ रहे हो, हम बड़े सियाने हो गए, तुम भी नहीं जानते थे। जगत अम्बा के मंदिर में जाते थे, जाकर उनसे कुछ ना कुछ मांगते थे, माता ये दे दे, माता ये दे दे, माता ये दे दे। वही को बच्चे की आश होगी, वही को आशीर्वाद मांगेंगे। अब जड़ चित्र तो कुछ कर नहीं सकते, अब ये पत्थर की मूर्तियां क्या कर सकती हैं? अपना प्रसाद नहीं खा सकते, ठीक बात है ना, वे समझते हैं, परंतु ये है भक्ति, परंतु ये क्या है? भक्ति। तुम जानते हो वे पास हो गए हैं, थे अब नहीं है। जगत अम्बा की महिमा है, एक तो नहीं है, तुम सब ब्राह्मण कुल की पालना करते हो, फिर देवी कुल की पालना करेंगे तुम इस समय, जैसे कि सारे जगत की पालना करते हो, परंतु कोई जानते नहीं, जानते चंडिका देवी का भी मेला लगता है, चंडिका देवी का भी मेला लगता है। चंडिका का नाम देखो कितना छी छी है, कितना छी छी है। बाबा कहते हैं आश्चर्यवत सीधा भगंती, आज कुछ नहीं कहा, हाँ जो बाकी बाबा कहते बच्चे रख चुके हैं, इसलिए सीधा जो आश्चर्यवत भगंती हो हार कति दे देते, तलाक 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 दे देते, हो जाकर क्या बनेंगे? चंडाल का जन्म पाते हैं, घर में चंचलता करते हैं, घर में क्या करते हैं? चंचलता करते हैं, तो उनको कहा जाता है ना, तुम तो चंडी हो, तुम तो चंडाल हो। जो घर में शोर जराबा झगड़ा करता रहता है तो माँ बाप भी बच्चों को यही कहते ना, तू तो चंडी है, तू तो चंडाल है, रावण है, ऐसे शब्द बोलते हैं ना। बरोबर तुम देखते हो शिव बाबा का बनकर, फिर भी बहुत चंचलता करते, बन गए हैं शिव बाबा के बच्चे और करते क्या हैं? चंचलता करते, चंचलता अर्थात अवज्ञा करना, कहना नहीं मानना, यही चंचलता है। शिव बाबा की सर्विस में डिस्टर्ब करते हैं तो अंत में चले ही जाते हैं। कोई भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में होगी, कुछ चंचलता करेगी, किसको समझा नहीं सकेगी, वह क्रोध करती होगी तो सब कहेंगे इनमें तो बहुत क्रोध है, सब कहेंगे इनमें तो बहुत क्रोध है। अब चंडिका एक तो नहीं, बहुत होती हैं, देवियों की महिमा भी है, हैं जी? हाँ, देवियों की महिमा भी है, और फिर ऐसी जो चंडिका आदि बनते हैं उनका भी गायन है, क्योंकि और ज्ञान तो उन्होंने अनेकों को सुनाया, परंतु कर्म उसके कैसे थे? क्रोध वाले, ईर्ष्या वाले, बदले की भावना वाले, फिर भी ईश्वर के बने। भल कोई चले जाते हैं फिर भी स्वर्ग में तो आएंगे ना, मालिक तो बनेंगे ना, भल मालिक तो राजा रानी ही बनते हैं, मालिक तो राजा रानी ही बनते हैं, लेकिन प्रजा भी कहेगी हम मालिक हैं। लोग कहते हैं ना हमारा भारत महान है, आजकल तो गीत में भी गाते रहते हैं भारत बहुत अच्छा था, भारत बहुत अच्छा था। अभी तुम बेहद के बाप के बच्चे बने हो, गोपी वल्लभ की गोप गोपियां गाई हुई हैं, वल्लभ बाप को कहा जाता है, वल्लभ किसे कहा जाता है? बाप को कहा जाता है जी, बल्लभ मानव बाप ही होता है, गोपियों का बाप। गाया भी जाता है एक गोपी वल्लभ की, गाया भी जाता है एक गोपी वल्लभ की अनेक गोप गोपियां, गोपी वल्लभ एक और उसकी गोप गोपियां अनेक। अब उनकी दृष्टि अपनी थी, बाबा की दृष्टि अपनी। सतयुग में तो गोप गोपिकाओं आदि की बात ही नहीं, ना सतयुग में गोप होंगे और ना गोपियां होंगी। इसे कहते हैं गोप और गोपियां। गोप किसे कहते हैं, गोपियां किसे कहते हैं? वो गोपी वल्लभ बताया, परंतु गोपी वल्लभ माना गोपी का बाप। अब प्रश्न ये है कि गोप और गोपी किसे कहा जाता है? गौ माना, गौ माना, गौ माना आत्मा, पुरुष शरीर में आत्मा गोप, स्त्री शरीर में आत्मा गोपी। समझ में आया? हाँ जी, सारा खेल या बाबा का आत्माओं पर होता है ना, आत्मा का ये ठीक है। तो सतयुग में तो गोप जो पुरुष देहधारी आत्मा वो गोप, स्त्री देहधारी आत्मा वो गोपियां, और वो है सभी आत्माओं का बाप। अभी तुम बच्चे विशाल बुद्धि बने, ये है विशाल बुद्धि होकर सोचना, क्योंकि वो सारी चाहे वो देह स्त्री है चाहे पुरुष है, सभी आत्माओं का वो बाप। हम जब इस प्रकार से सोचेंगे कि सभी आत्माएं मेरे बाप के बच्चे मेरे भाई हैं, तब है विशाल बुद्धि। जब हम सोचेंगे मेरा परिवार, मेरी कॉलोनी, मेरा गांव, मेरा देश, मेरा सेंटर, मेरा मेरा हद में आ जाएंगे, तो दूरांदेशी बुद्धि बने हो, बुद्धि का ताला खुल गया है। इस जन्म की जीवन कहानी को तुम अच्छी रीति जानते हो। हर एक को नशा तो रहता है ना, हर एक को क्या रहता है, नशा तो रहता है ना। अभी बिरला है, उनको अपने धन का नशा होगा, समझेंगे मैं सबसे सौकार हूं, मैं सबसे सौकार हूं। परंतु तुम जानते हो जो आज सौकार हैं वे फिर गरीब बन जाएंगे। तुम्हारी और अन्य मनुष्यों की बुद्धि में रात दिन का फर्क, तुम्हारी और मनुष्यों की बुद्धि में रात दिन का फर्क है। कोई को क्या नशा है, कोई को क्या नशा है, कोई को अपने शरीर का नशा है, कोई को अपने पैसे का नशा है, कोई को अपने परिवार का नशा है। हर एक के नशे अलग अलग है। मैं फलाना हूं, ऐसे हूं, इसको इस ब्रह्मा को भी नशा था ना, क्या नशा था, मैं बड़ा ज्वेरी हूं, सारे विश्व में विश्व के बड़े बड़े राजा महाराजा मेरे से ही गहने खरीदते हैं, और भी ज्वेरी होंगे, तो ये तो नहीं कि इसी के नाम पे सारे थे। मैं बड़ा ज्वेरी हूं, और अब समझते हैं वो सब नशे कोड़ी मिसल। तुम बच्चों को कितना नशा चढ़ा हुआ है, वे समझते हैं हम कमाएंगे, दुनिया वाले समझते हैं हम कमाएंगे, फिर हमारे पुत्र पोत्रे खाएंगे, और यहाँ तो वो बात ही नहीं है। तुम जानते हो हम बेहद के बाप को जानकर उनसे वर्षा पा रहे हैं। अब जिसकी प्रालब्ध हम ही खुद जन्म बाई जन्म पद पाएंगे, जो हमें अप पुरुषार्थ करेंगे उसके आधार पर हम जन्म बाय जन्म पद पाएंगे। पुत्र पोत्रे आदि सब यहाँ पुरुषार्थ कर रहे हैं, हमारे पोत्रे खाएंगे, ये ख्यालात वहां नहीं रहती, ये ख्यालात वहां नहीं रहती। समझते हैं अविनाशी राजाई है, यहाँ तो राज्य लोग समझते हैं पुत्र पोत्रे खाएंगे। तुम अभी बाप से इतना वर्षा लेते हो, ऐसे कर्म करते हो जो 21 जन्म उसका फल मिलता रहता है। पुत्र पोत्रों का ख्याल नहीं रहता, वे भी सब यहां ही वर्षा पाते हैं। तुमको कितना ज्ञान है, तुमको कितना ज्ञान है, मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। गॉड फादर जिनको इतना याद करते हैं, जरूर उनसे इतना भारी सुख मिलता होगा। गाते हैं ना, हे परम पिता परम आत्मा रहम करो, उनको परम आत्मा कहा जाता है। वे सुप्रीम है, जन्म मरण रहित है, इसलिए उनको परम आत्मा अर्थात परमात्मा कहते। सभी आत्माओं का रूप एक जैसा है, जैसा जैसा पुरुषार्थ करते हैं वैसा पद पाते हैं। इनको इनकी आत्मा अच्छा पड़ती है तो नारायण बनती है, कोई फिर फेल होंगे तो राम राम बनेंगे। आत्मा ही बनती है ना, तुम्हारी आत्मा समझती है मैं परमपिता परम आत्मा से राजयोग सीख रही हूँ। आत्मा फिर आकर नया चोला पहन पाठ बजाएगी, नर से नारायण बनेगी। ये तुम बच्चों की बुद्धि में है नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार, फिर यह ज्ञान प्राय लोप हो जाएगा, वहां कोई पतित होगा नहीं। ज्ञान किसको देंगे, वहां कोई पतित होगा नहीं, ज्ञान किसको देंगे। पतित पावन को यहाँ याद करते हैं। अच्छा समझो, गंगा पतित पावनी है तो भी वह राजयोग तो नहीं सिखला सकते। बाप तो राजयोग सिखलाते हैं ना, ये सारा ड्रामा का राज आदि से अंत तक तुम बच्चों की बुद्धि में, तुम बच्चों की बुद्धि में है। तुम सब पढ़ते तो एक ही क्लास में हो लेकिन नंबर वार हो। शुरू शुरू में 300 की भट्टी थी, गौशाला में हजारों की अंदाज में गौवें हो तो कोई संभाल भी न सके। भट्टी भी थोड़ों की बननी थी, उनमें से भी कई तो चल रहे हैं, कई टूट पड़े हैं, कई चल रहे हैं, कई टूट पड़े। कई बच्चे समझते हैं हम पहले से होते तो अच्छा था, परंतु ऐसे भी नहीं है। पुराने पुराने कितने भागंती हो गए, 25-30 वर्ष वाले भी इतना नहीं याद रखते थे, रखते कि वे बेहद का बाप। 25-30 वर्ष का मतलब क्या है, जिनको ज्ञान में चलते हुए 25 वर्ष 30 वर्ष हो गए हैं वो भी ये नहीं समझते कि हमारा बेहद का बाप है जो हमें परम धाम से पढ़ाने के लिए आया। सबको आप सारे 25-30 वर्ष बाबा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, सेकंड की बात है। बाप कहते हैं तुम मेरा बनने से स्वर्ग के मालिक बनेंगे, तुम मेरे बनो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। जीवन मुक्ति तो राजा रानी भी पाते, प्रजा भी पाती, परंतु स्वर्ग के मालिक बनना ये तो पुरुषार्थ पर निर्भर करेगा। गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति, एक सेकंड में मिलती है जीवन। बच्चे जो पूरा पढ़ते नहीं है वो क्या करते होंगे, चंचलता करते होंगे, झरमुई झगमुई झगड़ा भगड़ा कतरा कुछ करते हैं। कोई कोई बच्चे तो बड़े आज्ञाकारी होते हैं, बाप से भी अच्छा मर्तबा पा लेते हैं, बाप 100-200 कमाने वाला होगा बच्चा लखपति बन जाता है, बच्चा लखपति बन जाता है। तो अलौकिक संबंध में भी ऐसे होता है, 7 रोज वाला बच्चा 25 साल वाले से तीखा चला जाता है। अभी नया नया 7 दिन का कोर्स किया है और 25 साल वाले से भी आगे। नंबर वार तो होते ही हैं, नंबर वार तो होते ही हैं। तुम वास्तव में सब सजनिया हो, पक्का कर रहे हैं। एक साजन को याद करते हो, मैं हूं तुम्हारा एक साजन, सब सजनियों का अलग अलग साजन नहीं मिलेगा, सब सजनियों का एक ही साजन, सब भक्तियों का एक ही भगवान और कोई नहीं। तुम जानते हो बाप आकर हमको सुखदान का वर्षा देते हैं, लौकिक पति है फिर भी याद उनको करते, सबके पास शरीर का पति है फिर भी उस साजन को याद करते हैं, पति भी उसी साजन को याद करते हैं। पतियों का भी पति मैं हूं, पत्नियों का भी पति मैं हूं, सजनियों का भी साजन मैं हूं, तो जो पति बने हुए हैं उनका भी पति, उनका पतियों का भी पति और बापों का बाप मैं हूं। वो बेकार है, पारलौकिक साजन अमृत पिलाते हैं, जो ना पिला सके वो तो विष पिलाता है, इसलिए उनको याद किया जाता है, क्योंकि वो तो जहर पिलावे और वो पिलावे अमृत। फिर तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते हो, फिर वहां कोई को याद नहीं करते। अभी के पुरुषार्थ से तुम 21 जन्म प्रारब्ध पाते, तुम्हारी बुद्धि कितनी खुली है, वे भी नंबर वार, तो बादशाही भी नंबर वार लेते हो, तुमको सब समझा दिया है। यहाँ अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ने से तुम पद भी उतना ऊंच पा सकते हो, नहीं तो अनपढ़े पढ़े के आगे भरी धोएंगे। इसमें पुरुषार्थ बहुत अच्छी रीति करना है, अभी टाइम अच्छा है पुरुषार्थ के लिए। तुम जानते हो जहाँ जीना है वहां ज्ञान अमृत, अर्थात पढ़ते रहना है अंत तक, जब तक जीना है तब तक ज्ञान अमृत पीते रहना है। सैपलिंग लगाते रहते हैं, कलम लगाते रहो, हर आत्मा में ज्ञान का बीज बोते रहो। कोई झट समझ जाते हैं तो समझा जाता है इनका पद तो अच्छा देखने में आता है, अच्छा नजदीक का फूल है, तन मन धन सब क्या किया है बाबा को अर्पण कर बैठे, सर्विस में अच्छा लग गया है, तन मन धन सेवा में अच्छा लग गया है, समझता है अपना समय जितना सर्विस में देंगे उतना फायदा है। जैसे बाबा हम ज्ञान नेत्रहीन अंधों की लाठी बना है, ऐसे हम भी हमें भी बनना है। तुम एक दो की लाठी बनते जाते हो, अंधा बनाया है रावण ने, ये तुमको समझाया जाता है कि इस समय सारी दुनिया लंका है, सब शोक वाटिका में, नाम रखा है अशोका होता, वहां खूब मजे उड़ाते। अब तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है, बाबा आया हुआ है महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है, ये तो लगनी है, जबकि घर के गेट खुलने हैं, द्वापर की तो बात ही नहीं। अभी तो घोर अंधियारा है ना, अभी तो घोर अंधियारा है ना, ब्राह्मणों की रात अब पूरी हुई, बाबा आया हुआ है, ये बातें तुम बच्चे ही जानते हो, ये बातें तुम बच्चे ही जानते हो। स्कूल में पढ़ते हैं, कोई तो बहुत अच्छे मार्क्स लेते हैं और कोई फेल हो जाते, कोई तो अच्छे नंबर ले लेते परंतु कोई क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। निशानी है, क्या है निशानी फेल होने की, वो चंद्रवंशी में चले जाएंगे, जो पास होंगे वो सूर्यवंशी में और जो फेल हुए वो चंद्रवंश। 75 से कम नंबर लिए तो चंद्रवंशी, जो 75 से ज्यादा लेंगे वो पास, वो आ जाएंगे सूर्यवंश। राम को क्षत्रिय की निशानी दी है, क्या है क्षत्रिय की निशानी, धनुष, सारा दिन बोझा उठा के तीर उठा के खड़ा रहता है। और सूर्यवंशी वो एक छोटी सी मुरली बजाते हैं और नाचते हैं, गाते हैं और मौज मस्ती मनाते हैं। राम मौज मस्ती नहीं मना सकते, वो जंगल में भटकता रहता है सारी जिंदगी, पैदा होते ही जंगलों में चला गया, शादी करके आया तो फिर जंगलों में चला गया, घर आया तो पत्नी को निकाल दिया। हां जी, मूर्ख लोग है ना, वो मानते रहेंगे, भगत बेचारे क्या करे, उनको ज्ञान तो है ही नहीं, उनको सब
नजर नहीं आता लोगों को।
हां जी,
राम के अलावा नजर नहीं आता
भाई, लड़ाई कैसे होगी, आखिरी खूने नाहे खेल कैसे होगा, ऐसे ही तो होगा। बोले अब नून में बोले जहां मर्जी। हां जी, क्या हुआ, जो चलेंगे नहीं वो रोएंगे और क्या करेंगे। हां जी, कौन सी यात्रा, ये जो अच्छा जो ये ढूंढ वाली थी, तो भी हो, चलो जो भी करेंगे वो उनका पार्ट है, यात्रा पूरी करो, डबल करो, दो बार कर लो। क्या हो गया, पता नहीं क्या बोल रहे। अरे भाई, चाहे कोई भी आया है, ये सिर्फ राजनीति है, इनका कोई फर्क नहीं पड़ता। एक इधर आ गई और एक इधर से पाकिस्तान चली गई, वो वहां मजे में, ये यहाँ मजे में, दोनों आनंद ले रहे, तो ये तो खेल है। मतलब ये तो वो अपनी राजनीति के खेल खेल रहे हैं, उनका काम है। राम को क्षत्रिय की निशानी दी है, वो सारी जिंदगी युद्ध लड़ता रहता है, अर्थ नहीं समझते। लव कुश की क्या क्या बातें बैठ सुनाते, सारा झूठ। खुद वाल्मीकि नहीं लिख के गया कि लव कुश मेरे पास पैदा हुआ, और आगे वालों ने गपोड़े घर के लिख दिए कि वाल्मीकि के पास लव कुश पैदा हुए। कितने झूठ दोष बैठ लगाते हैं, गाते हैं, राम राजा राम प्रजा धर्म का उपकार। राजा भी राम है और प्रजा भी राम है। अब ना समझ में आए तो उनको क्या कह सकते, मेरे समान बनो गुणों में, परंतु यहाँ कौन बनेगा, धर्म का उपकार है। फिर ये सब बातें कहां से आई, ये सब बातें समझने की, तुम जानते हो ये नॉलेज नंबर वार हमारी बुद्धि में, इस ज्ञान को सब एक जैसा नहीं समझते। स्टूडेंट को बहुत तीखा पुरुषार्थ करना चाहिए। हम गॉड फादरली स्टूडेंट है, टीचर को कौन नहीं याद करेंगे। हम हैं पतित पावन गॉड फादरली स्टूडेंट। इसमें बाप, टीचर, सतगुरु तीनों ही आ जाते हैं। तुम सब सीताएं हो ना, तुम सब कौन हो? सीताएं हो ना। रावण की शोक वाटिका में पड़े हो, रावण की शोक वाटिका में पड़े हो। इनकॉर्पोरियल गॉड फादर इज ज्ञान सागर का नॉलेज फुल। जो अशरीरी भगवान है, सारे संसार की आत्माओं का पिता है, वो ज्ञान का सागर। श्री कृष्ण को या लक्ष्मी नारायण को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे, उनकी महिमा ही नारी है। गीत भी गाते हैं ना, उनकी महिमा अपरम अपार। जो ऐसा बनाते हैं तुम कहते हो बाबा हम आपसे पूरा पूरा वर्षा लेंगे। आप कितने मीठे हो, कितने प्यारे हो। लक्ष्मी नारायण कितने मीठे, कितने प्यारे हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र देखो, हमेशा मुस्कुराहट वाले दिखते। तुम जानते हो देवताएं इस भारत में ही थे, अभी कहां हैं? तुम सबको बतला सकते हो कि ये उनका अंतिम जन्म है। फिर से श्री कृष्ण बनना है। अभी कृष्णपुरी स्थापन हो रही है, श्री कृष्ण की आत्मा भी अभी राजयोग सीख रही है। तुम भी कृष्णपुरी में जाना चाहो तो आकर ये राजयोग सीखो। लक्ष्मी नारायण कहने से मनुष्य मूंझ जाते हैं, श्री कृष्ण को झूले में झुलाते हैं, पूजा लक्ष्मी नारायण की करते हैं, उनों का बाल चरित्र कुछ भी नहीं जान। लक्ष्मी नारायण बचपन में क्या थे, कहां थे, कैसे थे, कुछ भी नहीं जानते। राधे कृष्ण फिर कहां गए, क्या हुआ, कुछ भी पता नहीं। राधे कृष्ण कोई आपस में भाई बहन नहीं थे। राधे कृष्ण आपस में कोई भाई बहन नहीं थे। अभी राधे कृष्ण का राज्य तो है नहीं, द्वापर में भी उन्हों की राजधानी का कुछ पता थोड़ी है। तो ये सब बातें समझने के लिए बहुत अच्छी बुद्धि चाहिए। लिटरेचर बनाने में भी मेहनत लगती है। विष्णु के अलंकार दिखाते हैं, परंतु वास्तव में विष्णु के ये अलंकार होते। विष्णु व लक्ष्मी नारायण को शंख थोड़े ही है, तो हम क्या लिखे। मनुष्य तो कुछ भी समझ ना सके। शंख तो है तुम्हारे पास, तो अलंकार जरूर ब्राह्मणों को देना पड़े। कहेंगे ये ब्राह्मण फिर कहां से आए, समझ नहीं सकेंगे। तुम समझा सकते हो, हम ब्राह्मण स्वदर्शन चक्रधारी हैं। हम ब्राह्मण कौन से हैं, क्या बनेंगे, हाँ, चक्रवर्ती राजा बनेंगे। कैसे बनेंगे चक्रवर्ती राजा, जब हम अपनी कर्म इंद्रियों पर जीत पाने के साथ साथ अपने राजाओं को भी चक्रवर्ती बनाएंगे, कर्म इंद्रियों पर जीत पाने वाला बनाएंगे। चक्रवर्ती राजा होता है जिसके आगे बहुत छोटे छोटे राजाएं होते, राजाओं का भी राजा। तो जो राजाओं को अपने जैसा चक्रवर्ती अपने जैसा सुदर्शन चक्रधारी बनाएगा, अपनी कर्म इंद्रियों का राजा बनाएगा, तब जाकर वो चक्रवर्ती राजा बनेगा। ये सब बातें समझाने में बड़ी ही विशाल बुद्धि चाहिए। प्रजा में जाने वाले मोटी बुद्धि समझ ना सके, समझाने में बड़ी ही डिफिकल्टी लगती है। बाबा लिखते भी हैं सिक्की लदे सुदर्शन चक्रधारी, बाबा मुख ब्रह्मा मुख वंशावली, परंतु तुम्हारे पास अलंकार कहाँ है। चित्रों में देवियों को तीसरा नेत्र दिया है, लेकिन उनको तो तीसरा नेत्र है नहीं। तुम्हारी अब तीसरी आंख खुली है, तुम शक्तियों की महिमा है, जगत अंबा है, तो बच्चे भी साथ में होंगे। मेजोरिटी माताओं की है, माताओं को ही ऊंच उठाते, माताओं को ही ऊंच उठाते। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर एक, अपना समय सर्विस में सफल करना, अपना समय सर्विस में सफल करना है। तन मन धन सब अर्पण कर जब तक जीना है, पढ़ाई पढ़ते रहना, आपस में एक दो की ज्ञान से पालना करनी, ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे बाप की अवज्ञा हो। वरदान है अविनाशी अति इंद्रिय सुख में रह सबको सुख देने और सुख लेने वाले मास्टर सुखदाता भव। अविनाशी अति इंद्रिय सुख में रहो और सबको क्या देना है, आपको सबको सुख देना है और सबसे सुख लेना है, चाहे वो देवे दुख, तब तुम बन सकते हो मास्टर सुखदाता। अतीन्द्रिय सुख अर्थात आत्मिक सुख, रूहानी सुख अविनाशी, इंद्रियां खुद ही विनाशी हैं और इन इंद्रियों से प्राप्त होने वाला सुख भी कैसा होगा, विनाशी हो। ये शरीर विनाशी, इस शरीर से मिलने वाला सुख भी विनाशी, तो उनसे प्राप्त सुख भी विनाशी होगा। इसलिए सदा अति इंद्रिय सुख में रहो तो खुशी का पारा चढ़ेगा, तो खुशी का पारा चढ़ेगा और वहां, इसलिए सदा अति इंद्रिय सुख में रहो तो दुख का नामो निशानी नहीं हो। जब तुम सुख में रहोगे, खुशी में रहोगे, तो दुख का नामो निशान नहीं होगा। अगर दूसरा कोई आपको दुख देता है तो आप क्या करो, लो मत, वो दुख दे रहा है परंतु पहले आप लो मत, दुख देना भी नहीं तो दुख लेना भी नहीं। आपका स्लोगन है सुख दो सुख लो, ना दुख दो ना दुख। कोई दुख दे तो उसे परिवर्तन कर आप सुख दे दो, उसको भी सुखी बना दो, तब कहेंगे मास्टर सुखदाता, तब कहेंगे मास्टर सुखदाता। स्लोगन है अधिक बोलकर एनर्जी गवाने के बजाय, ज्यादा बोलकर एनर्जी गवाने के बजाय अंतर्मुखता के रस के अनुभवी बनो, अंतर्मुखता के रस के क्या बनो, अनुभवी बनो, और आपको स्वाद आने लगे अपने आप को सुधारने में। अच्छा, ओम शांति और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।